समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, परिक्रमा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ उनके पास खास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तियों की भी हम बात करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि है या है जन्मदिवस। परिक्रमा के इस संघ के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। अनुजा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार, हेलो एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून मुकेश। मुकेश, इट्स अ प्लेजेंट विंटर सीजन गोइंग ऑन, व्हिच इज अ ग्रेट टाइम फॉर आउटडोर एक्टिविटीज लाइक यू कैन गो फॉर वाइल्ड लाइफ सफारीज, वाटर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्सप्लोरेशन एंड मेनी थिंग्स। विंटर ब्रिंग्स इन वार्म ट्रेडिशनल फूड एज वेल अलॉन्ग विद मेनी फेस्टिवल्स वी आर looking forward to. If we talk about the eastern region, we have the ongoing Hornbill Festival. The Cherry Blossom Festival was also there, which just got over in the month of November. All are waiting for the Mahakumbh at Prayagraj in the month of January, and not to forget the Christmas and the New Year. So lots of things to look forward to, and we will keep you updated from all the regions in our news magazines. But right now, news making headlines at this hour.
Ji haan. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य के लिए कृषि महत्वपूर्ण है, टिकाऊ खेती के लिए नवीनतम तकनीक के उपयोग पर बल दिया।
सीनियर बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस टू टेक ओथ फॉर द थर्ड टाइम एज महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर दिस इवनिंग।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मेक इन इंडिया के माध्यम से छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए स्थायी परिस्थिति बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की प्रशंसा की।
ISRO launches European Space Agency's Proba 3 mission satellites from Sriharikota.
अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद फ्रांस की सरकार गिरी, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे।
And in women's cricket, India have set a target of 101 runs against hosts Australia in first ODI of the three-match series in Brisbane. And Mukesh, it's now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. And today we will talk about International Volunteer Day. The United Nations celebrates International Volunteer Day for Economic and Social Development on 5th of December annually. Commonly known as International Volunteer Day, this special occasion provides a platform for volunteers worldwide to come together and highlight their invaluable contributions to social and economic development. This day serves as a reminder of the transformative power of volunteerism in addressing global challenges and also fostering sustainable progress at local, national, and international levels. This day also focuses on achieving the sustainable development goals and highlights the work of the volunteers in building resilient communities.
बिल्कुल, हमारे आसपास ऐसे कई स्वयंसेवक हैं जो लोगों की भलाई के लिए लगातार काम करते रहते हैं। ये स्वयंसेवक निर्धन लोगों के लिए अधिकारों की रक्षा से लेकर किसी प्राकृतिक आपदा में लोगों की मदद करना, स्वास्थ्य देखभाल, भोजन का प्रबंध करना, बेसहारा लोगों को आसरा देने जैसे कई कार्य करते हैं। ऐसे में स्वयंसेवकों को प्रोत्साहन देने और इनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को सम्मान देने के लिए प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है। दरअसल स्थानीय और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे स्वयंसेवकों के विकास में योगदान के महत्व देने के लिए 17 दिसंबर 1985 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव में 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस के रूप में मनाने की बात कही गई थी और तब से लेकर हर साल इस दिन अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है।
Yes, according to the UN, International Volunteer Day promotes peace and development by championing the recognition of volunteers and working with partners to integrate volunteerism into developmental programming. It also provides a unique chance for volunteers and organizations to celebrate their efforts. It promotes their work and shares their values among communities, non-governmental organizations, United Nations agencies, government authorities, and also the private sector.
इस दिन को मनाने के लिए हर साल एक विषय भी जारी किया जाता है और इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस का विषय है सभी के लिए कुछ न कुछ। जी हाँ, कुछ न कुछ सबको तो मिलना ही चाहिए, और ये तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर में मौजूद स्वयंसेवक विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय हैं और किसी भी आपात स्थिति में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर हम कोरोना महामारी की बात करें तो कोरोना महामारी के दौरान भी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वयंसेवकों की भूमिका की प्रशंसा की थी। इस महामारी के दौरान दुनिया भर में स्वयंसेवकों ने लॉकडाउन के हालात के बीच पीड़ितों और प्रभावितों की मदद के लिए हर संभव कदम उठाए थे। ऐसे में इन स्वयंसेवकों को प्रोत्साहन देने और स्वयंसेवकों के प्रयासों का समर्थन करने के लिए यह दिन विशेष महत्व रखता है। और समय हो चला है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि उनके पास क्या कुछ खास है। तो अनुजा, सबसे पहले उत्तर प्रदेश चलें।
राइट, वेयर ऑल द प्रिपरेशंस आर गोइंग ऑन फॉर द महाकुंभ कमिंग अप।
जी हाँ, अगले वर्ष उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार महाकुंभ को और भी खास बनाने के लिए देश के दिग्गज और नामचीन सितारे महाकुंभ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं का मनोरंजन करेंगे। तो प्रस्तुत है हमारे लखनऊ संवाददाता की रिपोर्ट।
13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ के लिए आज से निमंत्रण पत्र बांटने का सिलसिला शुरू हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रदेश के मंत्रियों को देश भर में निमंत्रण बांटने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्रियों के राज्यवार दौरे का कार्यक्रम मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी किया गया है। वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ की भव्य कवरेज के लिए भी सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने आज मेला क्षेत्र का भ्रमण किया और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कुंभ के सजीव प्रसारण को लेकर बैठक की। कल CEO गौरव द्विवेदी ने आकाशवाणी की महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल, दूरदर्शन की महानिदेशक कंचन प्रसाद और दूरदर्शन समाचार की महानिदेशक प्रिया कुमार समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी। महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता के साथ पूरी दुनिया को दिखाने के उद्देश्य से श्री द्विवेदी ने मेला प्राधिकरण से जुड़े अधिकारियों के साथ चर्चा की। बैठक में महाकुंभ के लिए किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर विमर्श हुआ। वहीं दूसरी ओर महाकुंभ 2025 को श्रद्धालुओं के लिए यादगार बनाने के लिए बॉलीवुड के जाने माने कलाकार रामायण और महाभारत भारत की लीलाओं का भी मंचन करेंगे। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और प्रदेश का संस्कृति विभाग मिलकर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन करने वाला है। मशहूर बॉलीवुड एक्टर आशुतोष राणा 25 जनवरी को हमारे राम थीम पर अपनी प्रस्तुति देंगे, तो अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी 26 जनवरी को गंगा अवतरण पर अपनी प्रस्तुति देंगी। 8 फरवरी को अभिनेता और सांसद रवि किशन शिव तांडव की प्रस्तुति देंगे, जबकि 21 फरवरी को पुनीत इस्सर महाभारत शो का मंचन करेंगे। इस दौरान देश के जाने माने बैंड भी लोगों का मनोरंजन करेंगे। परिक्रमा के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी।
और उत्तर प्रदेश से अब चले नागालैंड।
राइट, वेयर द 25th एडिशन ऑफ द नागालैंड आइकॉनिक हॉर्नबिल फेस्टिवल हेल्ड इन द स्टेट कैपिटल ऑफ कोहिमा कंटिन्यूज टू कैप्टिवेट बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल विजिटर्स एज इट एंटर्स इट्स 5th डे टुडे। नोन एज द फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज अ सेलिब्रेशन ऑफ द रिच कल्चर, ट्रेडिशंस एंड हिस्ट्री ऑफ नागालैंड, शोकेसिंग द यूनिक डायवर्सिटी ऑफ इट्स 18 Naga tribes. We have a report on this.
One of the main draws of the Hornbill Festival is the area of the tribal performances. Cultural Connect is a cultural extravaganza presented by the Department of Art and Culture, Nagaland. The outstanding cultural troops from all parts of Nagaland present to the visitors a glimpse into the rich cultural songs, dances and traditional games of the Naga tribes. I am at the main arena, Kisama. We are witnessing the cultural song, dances and the traditional games. Let's hear some thoughts and reaction from the visitors.
Hi, my name is Himanshu. I am from Delhi and I am visiting this Hornbill Festival 25th anniversary for the first time. Obviously, this is my first visit and this is a very unique setup where you tend to see 18 tribes and which they are showing their culture, food and everything. And it's a unique way of knowing the culture of Nagaland. And I guess this is one of my best experience. I have visited a lot of festivals, India and around globe. This is one of the unique festivals that I have visited.
Can you share how you came to know about this festival?
Actually, I saw it on television. On television, there was a publicity and that's how I came to know about this festival. Though I wanted to come here from last 10 years, but couldn't do it. But yes, this time I made it. So
would you like to share something to your friends who have not visited or anyone who would obviously like to visit Hornbill Festival? Any message to them?
Obviously, if you want to start with the Naga culture, you can start with Kohima and obviously then you can proceed to other tribal areas where you can understand each and everything in detail. But to start with, you can start with Hornbill Festival.
Hi, I'm Himeli Pandit and I'm from Kolkata. This is my first time in Hornbill Festival in Nagaland, so the energy is fire. Tower 4 is going on right now. It's like bang on energies. Yesterday we landed and I had that night market thing. Oh wow, so colorful, so pretty. Lights everywhere, music, different kind of food. Wow, just and I'm loving it. Like, please experience, please come and experience Hornbill. It's beautiful. You'll feel different here. Different from your natural being, basically.
Well, that was how visitors are being treated to a rich display of traditional Naga dances, songs and rituals performed by the different Naga tribes. This performance not only highlights the distinct cultural practices of each tribe, but also offers an insight into deep-rooted history and customs of Nagaland. For Parikrama, this is Asunyo from Kohima.
And now from the Northeast region to Visakhapatnam in Andhra Pradesh, where the Andhra Pradesh Solar Energy Association is actively contributing to the implementation of the Pradhan Mantri Surya Ghar Yojana, which is a national initiative for solar rooftops launched by the central government, thereby making it more accessible to the public. We have a report.
Andhra Pradesh Solar Energy Association organized a three-day Solar Renewable Energy Expo 2024 called RENEXT in Visakhapatnam from November 22nd to November 24th. Rajya Sabha member Golla Babu Rao, who has been nominated as a member of the Parliamentary Consultative Committee on Renewable Energy recently, has underlined the need for all stakeholders, including consumers, to keep themselves informed on the benefits of eco-friendly solar energy. He inaugurated the RENEXT Solar Renewable Energy Expo organized in Visakhapatnam. The primary objective of this expo is to connect with hundreds of system integrators, institutional representatives and industry professionals in an economically efficient manner. The exhibition featured approximately 40 stalls representing manufacturers from across India, showcasing cutting-edge technologies in solar infrastructure. Exhibitors presented a wide array of products including photovoltaic modules, power inverters, energy storage systems, solar pumps, electric vehicle chargers, power cables, solar trackers, switch gears, and advanced battery technologies. The association anticipated attracting thousands of visitors daily and arranged on-the-spot loan sanctioning for individuals interested in installing residential solar panel systems. Association President Hemakumar said that Expo received good response from the people of the city and people came in the large numbers to the Expo. The organizers said that people of the city have shown keen interest on the central government's Pradhan Mantri Surya Ghar Yojana. This is Satyanarayana for Parikrama from Visakhapatnam.
और आंध्र प्रदेश से अब चलते हैं महाराष्ट्र. जी हां, हम चल रहे हैं पुणे. पुणे जिले के तेंदुआ से प्रभावित क्षेत्रों में मनुष्य के साथ हो रहे संघर्ष पर विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके तेंदुए का पता लगाया जा रहा है. तेंदुए की हरकत पता चलने पर सायरन बजाने वाली प्रणाली पुणे जिले के जुन्नार तहसील में लागू की गई है. इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे पुणे संवाददाता.
अनुमान है कि जुन्नर वन प्रभाग के चार तहसील यानी आंबेगांव, जुन्नर, शिरूर और खेड़ में लगभग 500 तेंदुए हैं, जिससे किसानों को खेतों में काम करने या बच्चों को घर से बाहर छोड़ने को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. पकड़े गए तेंदुए जंगल में छोड़ दिए जाते हैं और वे फिर वापस आते हैं. तेंदुओं के आश्रय स्थलों की संख्या कम हो रही है. लगभग हर दिन कुछ तेंदुए पिंजरों में पकड़े जाते हैं. इन तेंदुओं को जंगल में आश्रय, भोजन और पानी कम हो रहा है. गन्ने की खेती उनकी शरण स्थली बन गई है. इसके चलते तेंदुआ भोजन पकड़ने के लिए किसानों के दरवाजे पर जाने लगा है. इसके समाधान के तौर पर वन विभाग ने अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेने की योजना बनाई है. इसके अनुसार घर के आंगन या बस्ती में तेंदुआ घुस आने पर उसे सचेत करने के लिए दो प्रणालियों का उपयोग जुन्नर वन मंडल में कार्यरत है. मोशन सेंसर अनाइडर के साथ AI लेपर डिटेक्शन सॉफ्टवेयर का उपयोग तेंदुओं और मनुष्यों के बीच संघर्ष को हल करने में उपयुक्त साबित हो रहा है. जैसे ही तेंदुआ दिखता है, अनाइडर मोशन सेंसर उसकी गतिविधि का पता लगाता है और सायरन बजाता है. शोर होने पर तेंदुआ भाग जाता है. AI लेपर डिटेक्शन सॉफ्टवेयर में 5000 से अधिक तेंदुए की तस्वीरें सहेजी है, इसलिए सायरन तभी बजता है जब तेंदुआ कैमरे के सामने आता है. ये सॉफ्टवेयर सिस्टम उन 55 स्थानों पर स्थापित किया गया है जहां तेंदुए रहते हैं. जुन्नर वन प्रभाग में तेंदुओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है और भविष्य में संकट गहराता जा रहा है. इसके दूसरे समाधान के तौर पर ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि मादा तेंदुओं की नसबंदी की जाए। इस संबंध में एक प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। जुन्नर में तेंदुओं और मनुष्यों का सह अस्तित्व कैसे कायम रहता है, इससे राज्य में अन्य जगहों पर जंगली जानवरों और मनुष्यों के बीच का संघर्ष का उत्तर मिल सकता है। परिक्रमा के लिए मनोज क्षीरसागर, पुणे।
Right, and still being with Andhra Pradesh, Andhra Pradesh's Samagra Siksha program has won a national award for promoting inclusive education. The state was recognized for effectively implementing the Rights of Persons with Disabilities Act. We have more on this from our correspondent.
Samagra Siksha program of Andhra Pradesh has received national award for being the best state in implementing the Rights of Persons with Disabilities Act. The award was presented by President Draupadi Murmu to the state project director B. Srinivas Rao at a ceremony in Delhi yesterday. The state earned this recognition as part of the National Awards for the Empowerment of Persons with Disabilities 2024, organized by the Ministry of Social Justice and Empowerment. Andhra Pradesh stood out for its innovative and inclusive approach to education for persons with disabilities. The state implemented a range of initiatives to ensure equal opportunities in education. Distance learning tools, internet-based teaching methods, and customized assistive technologies have empowered students with disabilities to access quality education. Special yoga programs were conducted to promote physical and mental well-being while raising awareness about the social rights of persons with disabilities. The Inclusive Education Division also conducted community outreach programs and workshops to sensitize society about inclusivity. These efforts have gained national recognition, setting a benchmark for inclusive education in India. Allu Murali for Parikrama from Vijayawada.
और खेल जगत की जानकारी लेकर स्टूडियो पहुंच चुके हैं नवीन सक्सेना। नवीन, बताएं कहां से खेलों की शुरुआत कर रहे हैं?
मुकेश, इस समय मेरे पास तमाम खबरें क्रिकेट से ही रिलेटेड हैं और सबसे बड़ी नजर जो है और सबसे ज्यादा नजर जो है सबसे ज्यादा चर्चा में है वो कल के मैच को लेकर है। वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल से एडिलेड के ओवल में दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है। मैच डे नाइट होगा और भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 से खेला जाएगा। भारत ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच 295 रन से जीता था, लेकिन मुकेश खबर ये है और सस्पेंस जो है आज भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने उठाया वो ये है कि मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा और खुलासा किया कि मिडिल ऑर्डर में वो बैटिंग करेंगे और केएल राहुल जो है पारी की शुरुआत करेंगे। उधर महिला क्रिकेट से अच्छी खबर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में 5 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी की और पूरी टीम 34 ओवर और 2 गेंद में 100 रन पर ही आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने 101 रन का पीछा करते हुए 16 ओवर और 2 गेंद में लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच 8 दिसंबर को ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। और अनुजा, हॉकी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुष जूनियर एशिया कप जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम की सराहना की है और कहा है कि उनके बेजोड़ कौशल, अटूट धैर्य और अविश्वसनीय टीम वर्क ने इस जीत को इस खेल के गौरवशाली इतिहास में दर्ज करा दिया है। और अपने सुनने वालों को बता दें कि भारत ने कल पाकिस्तान को 3 के मुकाबले 5 गोल से हराकर यह खिताब अपने नाम किया था। और अब परिक्रमा की तमाम खबरों के लिए वापस हम चलते हैं मुकेश और अनुजा के पास।
राइट, एंड आफ्टर द स्पोर्ट्स न्यूज वी हैव द बिजनेस न्यूज फॉर द डे। डोमेस्टिक बेंचमार्क इक्विटी इंडिसेस टुडे एंडेड विद गेन्स सपोर्टेड बाय रैली इन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स। The 30-share BSE Sensex surged 809 points or 1% to close at 81,766 and the NSE Nifty 50 gained 241 points or 0.98% to settle at 24,708. In the global crude market, Brent crude was trading 0.37% up at $72.58 per barrel and WTI crude gained 0.5% to trade at $68.88 per barrel when reports last came in. In the Indian bullion market, the 24-carat gold was trading down at 77,040 rupees for 10 grams, while silver 999 fine is also trading down at 93,150 per kilogram when reports last came in. And now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
In today's episode, we pay homage to the philosopher, poet and Indian nationalist Sri Aurobindo Ghosh, who left us on 5th December 1950. Ghosh was perhaps the first Indian political leader to openly put forward in his newspaper Bande Mataram the idea of Purna Swaraj for the country. Later, he became a spiritual reformer, introducing his visions on human progress and spiritual evolution.
ध्यान धन कु से तू बांधा लोक लोक मिलाया.
Ghosh was born on August 15, 1872 in Calcutta and went to King's College in England to study for the Indian Civil Service. It was in Europe that he first felt the call of nationalism after getting acquainted with Italian and Irish nationalists. He also participated in an Indian students' organization called the Cambridge Majlis.
After returning to India, he took up various civil service works under the Maharaja of the princely state of Baroda. Aurobindo became increasingly involved in nationalist politics in the Indian National Congress and the revolutionary movement in Bengal with the Anushilan Samiti. He was arrested and faced charges of treason for Alipur conspiracy. However, he was never convicted. Famous freedom fighter Chittaranjan Das defended Aurobindo Ghosh in the Alipur bomb trial of 1909 with these words.
Long after this controversy is hushed in silence, long after this turmoil, this agitation ceases, long after he's dead and gone, he'll be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet of nationalism, and the lover of humanity. Long after he's dead and gone, his words will be echoed and re-echoed, not only in India, but across distant seas and lands.
During his stay in jail, Aurobindo had mystical and spiritual experiences. It was in his speech at Uttarpada that Sri Aurobindo, for the first time, spoke publicly of his yoga and his spiritual experiences.
Aurobindo moved to Pondicherry, leaving politics for spiritual work, and devoted the rest of his life to the development of his integral yoga.
On 15th of August 1947, Sri Aurobindo strongly opposed the partition of India, stating that he hoped the nation will not accept the settled fact as forever settled. He was nominated twice for the Nobel Prize in 1943 for the Nobel Award in Literature and in 1950 for the Nobel Award in Peace. Sri Aurobindo died on December 1950. Over 60,000 people attended to see his body resting peacefully. We salute this great guru, philosopher, and nationalist.
We also commemorate today writer, journalist, and Indian independence activist Ramaswamy Krishnamurti, who died on the 5th of December 1954. Popularly known as Kalki Krishnamurti, he participated in the non-cooperation movement.
Kalki was born on 9th September 1899 in Puttamangalam, Tamil Nadu. He had his primary education in his village school and later attended municipal high school in Mayavaram. However, he quit school in 1921 in response to Mahatma Gandhi's call for non-cooperation.
Later, Kalki emerged as one of the foremost Tamil writers. He established Tamil weekly, Kalki magazine, in 1941. He wrote the historical novel Ponniyin Selvan, based on the Chola dynasty, and two other novels on Pallava dynasty. His writings include over 120 short stories, 10 novellas, 5 novels, 3 historical romances, editorial and political writings, and hundreds of film and music reviews. He died in Chennai on the 5th of December 1954 at the age of 55.
और परिक्रमा कार्यक्रम में वक्त हुआ है उन महान व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज पुण्यतिथि है. इस क्रम में सबसे पहले याद कर रहे हैं अमृता शेरगिल को.
राइट, बॉर्न ऑन 30th ऑफ जनवरी 1913 इन ब्यूडापेस्ट हंगरी, अमृता शेरगिल वॉज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट वुमेन आर्टिस्ट टू इमर्ज आउट ऑफ इंडिया इन द 1930s. इन हर ब्रीफ लाइफ स्पैन ऑफ 28 ईयर्स ओनली शी लेड द मॉडर्न इंडियन आर्ट मूवमेंट विच वॉज देन टेकन अहेड बाय द बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट्स ग्रुप एंड ऑफकोर्स अ पायनियर इन मॉडर्न इंडियन आर्ट ड्रॉन टू पेंटिंग फ्रॉम एन अर्ली एज. शेरगिल स्टार्टेड गेटिंग फॉर्मल लेसन्स इन द आर्ट एट द एज ऑफ ओनली 8.
बिल्कुल, अमृता शेरगिल ने कैनवास पर भारत की एक नई तस्वीर उकेरी थी और अपनी पेंटिंग्स के बारे में अमृता का कहना था कि मैंने भारत की आत्मा को एक नया रूप दिया है। ये परिवर्तन सिर्फ विषय का नहीं बल्कि तकनीक भी था। अमृता ने इस प्रकार के यथार्थवादी चित्रों की रचना की थी जिनकी सारे संसार में चर्चा हुई थी।
Right, and in 1937, she is set on a tour of South India, and she had also visited Ajanta Caves, and which had a deep influence on in her paintings. All these paintings had a deep influence on her paintings and her works from that period. And here we can see the startling different works of hers from the realist watercolor mode of Indian painting prevalent at that time.
जी हाँ, भारत आने के बाद अमृता ने शिमला में अपना स्टूडियो आरंभ किया था और जिस प्रकार अपना स्वरूप बदलकर उसे भारतीय नारी बनाया था, उसी प्रकार ऐसे अन्यतम चित्रों की रचना की जिसके कारण उनकी ख्याति बहुत जल्दी फैलने लगी। वे अपने भारतीय मूल को जागृत करना चाहती थी और 1936 में उन्होंने अजंता का दौरा किया तो उनके चित्रण में फिर से बदलाव आया। उन्होंने लंबे चौड़े चित्रों की बजाय छोटे वास्तविक चित्रण का निर्माण प्रारंभ किया और इस प्रकार उन्होंने भारतीय चित्रकला को भी एक नई दिशा देकर प्रभावित किया। उनके बहुत से चित्र अवनींद्रनाथ ठाकुर और चुगताई के कार्य से भी प्रभावित थे।
And today we also pay tribute to Nelson Mandela, who was a South African anti-apartheid activist and politician who served as the first president of South Africa from 1994 to 1999. And he was the country's first black head of the state and the first elected in a fully representative democratic election. Known and loved around the world for his commitment to peace, negotiation and reconciliation, Nelson Mandela was South Africa's first democratically elected president.
और अनुजा बता दें कि नेल्सन मंडेला ने अपनी जिंदगी के 27 वर्ष रोबिन द्वीप पर कारागार में रंगभेद नीति के खिलाफ लड़ते हुए बिताए थे और सरकार द्वारा चलाया गया दमन चक्र अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और नेल्सन मंडेला का जनाधार बढ़ा रहा था और लोग संगठन से जुड़ने लगे और आंदोलन दिन प्रतिदिन मजबूत होता चला गया।
राइट, एंड कमिंग टू द बर्थ एनिवर्सरी नाउ।
जी हाँ बिल्कुल,
ये आकाशवाणी है। अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार सुनिए।
जी हाँ, आकाशवाणी के प्रसिद्ध समाचार वाचक रामानुज प्रसाद सिंह की आज जयंती है। सन 1960 में आकाशवाणी से जुड़े रामानुज प्रसाद सिंह ने लगभग लंबे समय तक आकाशवाणी पर खबरें पढ़ने का कार्य किया। सवेरे, दोपहर और शाम के प्राइम टाइम बुलेटिनों में सालों तक समाचार पढ़ने के कारण रामानुज प्रसाद सिंह आम लोगों में एक जाना पहचाना नाम बन गए थे। वो कवि और साहित्यिक कुलगुरु रामधारी सिंह दिनकर के अनुज सत्यनारायण जी के बेटे यानी दिनकर जी के भतीजे थे।
Right, and next personality we pay tribute to is popularly known as the Shair-e-Inqilab, the poet of revolution, who was an Indian Urdu poet born in Malihabad in British India. And known for his liberal values and the challenging the established order, he wrote 1 lakh couplets and more than 1,000 rubaiyat in his lifetime.
बिल्कुल, 20वीं शताब्दी के महान शायरों में से वो एक थे और 1958 तक वो भारत में रहे और फिर पाकिस्तान चले गए। ये गजल और नज़में तखल्लुस जोश नाम से लिखते थे और अपने जन्म स्थान का नाम भी उन्होंने अपने तखल्लुस में जोड़ लिया था, जो पूरा नाम जोश मलिहाबादी के रूप में जाना गया।
दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। मेरे रोने का जिसमें किस्सा है, उम्र का बेहतरीन हिस्सा है। मुझको तो होश नहीं, तुमको खबर हो शायद। लोग कहते हैं कि तुमने मुझे बर्बाद। किसी का अहदे जवानी में पारसा होना, कसम खुदा की ये तौहीन है जवानी की।
और अब अनुजा किसको याद कर रहे हैं?
Nadira, the feisty and boisterous Nadira not only took leading roles but also went on to accept negative roles in Hindi movies and thus reigned supreme in the 1950s and 60s. Thereafter, she appeared in character roles where she played the mother, an aunt or older woman, adding poise and dignity to these roles. And who can forget her role in the movie Julie in 1975 when she got the Best Supporting Actress Award for that.
So, unki film ka ek sabse pehle dialogue sun lete hain.
Jee.
मैं राजकुमारी पैदा हुई हूँ और मरते दम तक राजकुमारी रहूंगी।
इस वक्त तू एक बेकस और लाचार औरत है, एक मर्द के रहम करम पर।
तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
और फिल्मी पर्दे पर नादिरा आत्मविश्वास से भरपूर नजर आती थीं और वे अपने किरदार में पूरी तरह से समा जाती थीं और 60 से भी अधिक फिल्मों में उन्होंने अपने बेजोड़ अभिनय की छाप छोड़ी थी। तो क्यों ना उनकी फिल्म का एक गाना भी सुन लेते हैं।
बार बार गाए कोई बांसुरी बजाए।
Yes, and she was among the highest paid actresses during her career and was one of the first Indian actresses to own a Rolls Royce at that time.
बिल्कुल. तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुकेश कुमार और अनुजा कुमार को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की, और आप बने रहिए समाचार के साथ.
नमस्कार.